आज हम पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 9। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः अंधः तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः अंधम् निपट अज्ञान, तमः अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते पूजा करते हैं, ततः उससे भूयः और अधिक इव सदृश ते वे तमः अंधकार, ये जो ऊ भी विद्यायां ज्ञान अनुशीलन में रताः लगे हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तात्पर्य, इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अत्यधिक लागू होता है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र में स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। मनुष्य के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्र तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्राय 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य बहुत कुछ इंद्र तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। भगवद्गीता के मत में 7:15 ऐसे लोग जो निपट इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं मूढ़ या गधे हैं। गधा मूढ़ता का प्रतीक है। जो लोग इंद्र तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्र तृप्ति के पद पर आसीन है। ईश विहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितनी कि सर्प के फण की बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणिविहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हरि भक्ति सुधोदय 3:11-12 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक जगत के नित्य दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जाती है। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। भगवद्गीता 2:42 और 7:25 के अनुसार भ्रांत संसारिक शिक्षक वेदवादरत तथा माया अपृत ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। वेदवादरत अपने को वास्तविक साहित्य में प्रखांड विद्वान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपत रहते हैं। भगवद्गीता में 15:15 में कहा गया है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन वेदवादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। जैसा कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, हमें यह जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस ईश चेतना को जागृत करना है, और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इन सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर यह मान चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं और इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वार्गिक आनंद की प्राप्ति, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवादरत लोग वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान की अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रता जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्दों के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रता का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रता का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवाद रत वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिसे शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझा जा सकता है। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद 1:2:12 का निर्देश है, लेकिन इन वेदवाद रतों का अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम प्रक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। माया अपहृत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर या देवता होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे अब उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बंधता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधा होता तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुई होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। कृपया आप सभी दोहराइए, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। ये ईशोपनिषद के ये श्लोक और इसके आगे कुछ श्लोक एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करते हैं, विद्या और अविद्या में अंतर। तो ये दो शब्द हैं, विद्या और अविद्या। भगवद गीता में भी भगवान ये दो शब्द प्रयोग करते हैं, जहां पर 13वें अध्याय में भगवान अलग अलग विषय बताते हैं और अंत में कहते हैं कि ये सब मैं विद्या घोषित करता हूं और इसके बिना जो कुछ भी है वो सब अविद्या है। तो अभी ये जो समय चल रहा है ये एग्जाम्स का समय चल रहा है। कब से आपके एग्जाम? सब लोग एग्जाम में बिजी हैं, परीक्षाओं का समय है। अभी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, खत्म हो गई शायद? शुरू। तो पूरा माहौल एजुकेशन इस समय परीक्षाओं का माहौल है, इसलिए शायद आज संख्या भी कम है, क्योंकि जब बच्चों का एग्जाम होता है आजकल तो माँ बाप का भी एग्जाम शुरू हो जाता है। बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को चिंता होने लगती है, क्या करेंगे बच्चे। तो हम आज देखने का प्रयास करेंगे कि ईशोपनिषद में भगवान क्या कहते हैं विद्या और अविद्या के विषय में, कि हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो वर्तमान समाज में जो चल रहा है शिक्षा के नाम पर, वो विद्या है या अविद्या है। तो जैसा हमने जो भजन गाया उसका भी सार हम लोग देखेंगे और ये श्लोक हम जो आज पढ़े, तो ईशोपनिषद का जो प्रथम श्लोक है उसमें बताया गया है, ईशा वाश्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदा मा ग्रद कस्विधनम। जो भी कुछ चर अचर दृश्य जगत में, पूरी एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है वो सब भगवान की संपत्ति है। ईशा वाश्यम इदम सर्वम, जो भी कुछ है वो सब भगवान की संपत्ति है और हमें केवल इन वस्तुओं का उतना ही अंश इस शरीर यापन के लिए उपभोग करना चाहिए जितना हमारे लिए निर्दिष्ट है, यह जानते हुए कि कोई चीज किसकी है। अर्थात भगवान ये भौतिक सृष्टि की रचना, जो भुलक्कड़ जीव हैं, यहाँ प्रभुपाद जी ये शब्द प्रयोग में लाते हैं, भुलक्कड़ जीव, फॉरगेटफुल सोल्स। तो हम सब क्या हैं? ऐसे भूले हुए जीव हैं जो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं कि वास्तव में हम भगवान के सेवक हैं और हमारा एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। ये भूल करके हम अपने को भोक्ता मानने लगे हैं और इस भ्रम में इस भौतिक संसार में आते हैं कि हम इस जगत का भोग करेंगे और इस प्रकार से विलास करेंगे। तो ऐसे भुलक्कड़ जीवों को पुनर्स्मृति दिलाने के लिए और जो उनकी विस्मृत चेतना में जो भोग करना चाहते हैं उस इच्छा को वो पूरा कर लें और फ्रस्ट्रेट हो जाएं और फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर वास्तविकता को समझकर पुनः इस अज्ञानता से निकलकर विद्या में स्थित होकर के पुनः भगवत धाम जा सकें, ये योजना है इस पूरी सृष्टि के निर्माण के पीछे। तो इस हेतु से भगवान ये सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक है कि इस तथ्य को गहराई से जानना और इसके अनुसार कार्य करना ये वास्तविकता है, ये विद्या है। ईशावाश्यम इदम सर्वम, ये समझना ये विद्या है और इसके अलावा जो कुछ भी है जिसका सार है ईश्वर अहम अहम भोगी, जो भी कुछ है उस सब का मैं भोगता हूं, संसार का केंद्र मैं हूं, जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय भोग करना, इंद्र तृप्ति में लिप्त होना जितना हो सके, जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी बुद्धि हो, और उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कीजिए, उसके लिए आप अलग अलग प्रकार की अविद्याओं को पनपाइए, रिसर्च R&D डिपार्टमेंट डेवलप कीजिए और उसके माध्यम से आप जो है भोग कीजिए। तो ये जो विचारधारा, ये अविद्या है। और ये विचारधारा कि ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है और अब बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन करना है। क्या मतलब है इसका बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन? ये जो आत्मा को शरीर धारण करना पड़ा है, ये वास्तव में उसके लिए बड़ी दुखद विषय है। ये शरीर सभी अविद्या का आगार है और सभी कष्टों का आगार है। तो ये बड़ी हमारे ऊपर विषमता आ गई है कि ये शरीर हमको धारण करना पड़ा है, लेकिन अब ये शरीर मिल गया है, अभी इसका उपयोग हम कैसे भगवान की सेवा में करें, जिससे हालांकि ये शरीर बेकार है लेकिन भगवान की सेवा में इसका उपयोग करने से इसका बेस्ट यूज होगा, जिसकी वजह से ये शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करने से धीरे धीरे हम इस शरीर के बंधन से पुनर्मुक्त हो जाएंगे। इसे कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो ये मनुष्य जीवन में हम इसीलिए आए हैं। तो इसलिए यहां पर यीशु परिषद में कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस संसार में केवल उन्हीं चीजों का उतना ही आप यूज कीजिए जितना इस शरीर को टिकाने के लिए जरूरी है। क्योंकि आप यदि आवश्यकता से अधिक यूज कर रहे हैं, यानी आप किसी दूसरे के मुंह का टुकड़ा छीन रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज किसी ना किसी के लिए बनाई गई है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे प्लानिंग है, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं है। तो ये समझते हुए आप जितना आपके लिए जरूरी है उतने में संतुष्ट होइए और इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए। अभी हमारे आजकल के विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, क्या ये केंद्र है, ये सिखाया जाता है, क्या ये लक्ष्य है शिक्षा का कि बच्चों सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तुम्हें केवल उतना ही उपयोग करना है जितना बस ये शरीर टिकाने के जरूरी है, क्योंकि पराभाव स्थावत अबोध जाता। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन में आप कुछ और कर रहे हो, लेकिन अगर आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवत धाम वापिस नहीं गए, तो बाकी सब आपका MBA मेडिकल सब बेकार हो जाएगा। आज तक आप में से कितने लोगों ने अपने क्लासेस में सुना है ये वाक्य टीचर्स को कहते हुए? धनंजय प्रभु को छोड़ देना, आपके स्कूल में आते हैं वो तो भी मंदिर की तरफ से आते हैं, इन जनरल सुना है कि नहीं? सुन सकते हम, ये कभी नहीं सुन सकते। कभी किसी यूनिवर्सिटी क्लास में, कभी किसी कॉलेज में, स्कूल में ये शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे बिल्कुल उल्टी शिक्षा दी जाएगी। और पूरा जो उसका आयोजन है शिक्षा का, वो इसी आधार पर है कि देखो ये जगत जो है बाई चांस खड़ा हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन अभी हैं हम यहाँ। तो अभी इसमें आप अपनी बुद्धि लगाओ, रिसर्च करो, और जो जितना शक्तिशाली है वो उतना ही ज़्यादा एन्जॉय करो, उसको अधिकार है, क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धिशाली है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो उसको उतना अधिकार है। बाकी सबका शोषण करके खुद आप एन्जॉय करो, और उसके लिए हम आपको एजुकेशन भी देंगे, आपको सिस्टमेटिक, हाँ फिर आपको ज़्यादा आगे पैसा कमाना है तो ज़्यादा डोनेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप उतने गुना ज़्यादा कमाओगे, तो आप भी ज़्यादा कमाओ हमको भी दो, दोनों का बिजनेस अच्छा चलेगा, इसलिए हम भी एन्जॉय करेंगे आप भी एन्जॉय करो। तो ये जनरल विचारधारा है पूरे, ये जो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा डेवलप हुआ है इसके पीछे ये विचारधारा है। आज हम अपने बच्चों को भेज देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अरे भाई ये एजुकेशन है, ये तो बिल्कुल, ये तो एक ऐसा नेचुरल हो गया है कि ये तो मस्ट, अगर बच्चा वो डिग्री नहीं ले, ग्रेजुएट नहीं बने, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बने, तो वो मनुष्य नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धर्म का अनुशीलन नहीं करे तो वो मनुष्य नहीं है, लेकिन आज की परिभाषा में यदि किसी के पास ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो वो मनुष्य नहीं है। सब समाज में उसको बड़ा ही, आप कहीं भी जाएंगे ससुराल आपसे क्या पूछते हैं, क्या पढ़ा है आपने, क्या पढ़े लिखे हो, क्या पढ़े लिखे, तो ये मानदंड है सबसे पहला, क्या पढ़े लिखे हो आप, क्योंकि उसी के आधार पर तोला जाता है कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना किसको सम्मान कितना देना है, वो डिपेंड करता है कितनी डिग्री है। इसलिए आप देखिए विजिटिंग कार्ड आप देखिए किसी लोग के, तो कई बार पूरा आगे पीछे डिग्री से भरा होता है, एक के बाद एक के बाद एक, नाम छोटा होता है, डिग्री बहुत सारी होती है, बहुत सारी, ये डिग्री वो डिग्री वो डिग्री वो डिग्री वो डिग्री, तो यानी कि वो स्पष्ट है कि आज के समाज में जितनी जिसके पास डिग्री है उतना ही वो ज़्यादा सम्मानित माना जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इन डिग्री होल्डर्स के विषय में? तो ज्यादा अच्छी ओपिनियन नहीं है शास्त्रों की डिग्री होल्डर्स के विषय में। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो बहुत ही क्रांतिकारी चीज बोलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो बोलते हैं कि ये विद्या का जो विलास है, भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजों के जमाने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उस समय में भारतीय को सबसे ऊंचा पद यदि कोई दिया जा सकता था तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का था। यानी पूरे भारत में कहे जाए तो वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लोग थे। उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजों के ज़माने में वो बने थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये भजन जो हमने गाया वो भजन लिख रहे हैं कि अभी वो ये भजन लिख रहे हैं अपनी वृद्धावस्था में। तो भक्तिविनोद ठाकुर हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, वो भगवान के एक मिशन के लिए ही इस भौतिक जगत में आए हैं, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार वो जो अपने जीवन का प्राथमिक चरण है उसमें एक सामान्य एक व्यक्ति की तरह भौतिक ज्ञान के अनुशीलन में अनुरक्त रहे। बहुत एजुकेशन उन्होंने लिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने और बाद में फिर वो भक्ति जो है उनको उन्होंने उसको प्रदर्शित किया। तो ये भगवान की इच्छा के अनुसार वो दिखाना चाहते थे कि क्या अविद्या है और क्या विद्या है और अविद्या से क्या होता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो बहुत सब विद्या लिए तो बुढ़ापे में वृद्धावस्था में ये भजन लिखे। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, परम साहस के साथ मैंने भौतिक विद्या विलास में ही समय काट दिया। हे प्रभु, मैंने आप तुम्हारे चरणों को कभी नहीं भजा, किंतु अब मैं एकमात्र तुम्हारे शरणागत हूं। तो मैंने बहुत सारा समय बिता दिया ये भौतिक विद्या के विलास में। विलास बहुत मुझे मजा आ रहा था जब मैं भौतिक विद्या ले रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे यही जीवन का सार है, और मैंने इसमें बहुत समय निकाल दिया। तो आप जानते हैं आज जो आधुनिक शिक्षा है उसको लेने में, डिग्री हासिल करने में कितने साल लगाने पड़ते हैं, है ना? एक ग्रेजुएट होने के लिए कितने साल चाहिए? 18 + 3 = 22-23 साल चाहिए। तो 22-23 साल जाकर के तो आपको एक डिग्री मिलती है। तो बहुत सारे साल आपको लगाने पड़ते हैं। और मैंने आपको कभी नहीं भजा, इस विलास में बड़ा उन्मत्त रहा कि वाह मैं कितना एडवांस कर रहा हूँ, कितना प्रगति कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कभी आपको आपकी चिंता ही नहीं की आपके भजन की। पढ़ते पढ़ते मेरा भरोसा बढ़ गया, बढ़ता रहा, क्योंकि मैं भौतिक ज्ञान को ही जीवन की असली गति मान बैठा था। तो जब हम पढ़ते रहते हैं, जब हमारे जीवन का गति हम निश्चित कर लेते हैं कि खूब भौतिक प्रगति करना ही जीवन का लक्ष्य है और ये भौतिक प्रगति करने के लिए माध्यम है डिग्री, तो हमारा भरोसा बढ़ता जाता है। हम बड़े कॉन्फिडेंट फील करते रहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा भी सुरक्षित हो गया हूँ, मेरे पास तो इतनी डिग्री है, मेरी समाज में ये स्थिति है, मेरा ये जॉब है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, और इस तरह से हम गर्वित होते रहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते रहते हैं, वाह मेरी सिचुएशन बड़ी सिक्योर्ड है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, यह आशा विफल हो गई, वह ज्ञान दुर्बल प्रमाणित हुआ, अब मैं जान गया हूं कि ऐसा सब ज्ञान अज्ञान है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अभी वृद्धावस्था आने पर मुझे पता लग रहा है कि यह सब भरोसा झूठा था, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है और जब मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगती है तब समझ में आता है कि ये विद्या कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी क्या करेंगे उस विद्या से, वो डिग्री साथ में लेके तो कुछ जाएंगे नहीं। यमदूत देखेंगे कितनी डिग्री है, हाँ बहुत अच्छा है, गहनतम अंधतम प्रविशंति, यहाँ बताया गया है कि जो जितनी ज्यादा अंधकार में जीता है वो उतने ज्यादा गहरे अंधकार नरक में जाके गिरता है, जो इस प्रकार से अविद्या के विलास में रहता है। तो अभी हम लोग अपनी डिग्री दिखा के उल्लासित होते रहते हैं, लेकिन हमें सबको जब मृत्यु निकट आती है तो हमें सबको जानकारी हो जाती है कि अभी ये सब पर्चे पेपर ये सब कोई नहीं, कुछ चलने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा चलेगा, जितने ज़्यादा पर्चे होंगे उतने ज़्यादा गहन तमोगुण में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस समय भरोसा खत्म हो जाता है, उस समय हकीकत सामने आती है, सच्चाई कि अभी मैं मरने वाला हूं और मैंने अभी जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जो मरने के समय मेरी मदद कर सके। अभी तक जो किया वो तो अभी यहां खत्म हो जाने वाला है, अभी आए के लिए क्या किया, विद्या के विलास में डूबा रहा, अभी कुछ नहीं किया, मृत्यु के समय में फिर केवल रोते रहते हैं, तो इसलिए बड़े निराश हो जाते हैं। और उस समय अनुभव होता है कि ये सब ज्ञान तो अज्ञान था, क्योंकि वास्तव में जो ज्ञान है, जैसा कि यहां पर बताया गया है ईशोपनिषद में, वो ये ज्ञान है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए तैयार कर सके, वो वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें है वो अज्ञान है। तो तीन शब्द हैं, पराविद्या, अपराविद्या और अविद्या। पराविद्या है आध्यात्मिक जगत में जो हमारे कार्य होते हैं, अर्थात भगवान विषय ज्ञान और हम कैसे भगवान के सेवक हैं, ये जो आध्यात्मिक जगत में हमारा क्रियाकलाप, हमारा भगवान के साथ संबंध, ये जो ज्ञान है इसे पराविद्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो इस भौतिक जगत से परे का ज्ञान है। फिर अपराविद्या इस भौतिक जगत की विद्या है, इस भौतिक जगत की वो विद्या जो हमारे लिए, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं तो इस शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, इस उद्देश्य से जिससे हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत की तरफ अग्रसर हो सकें, इसे अपराविद्या कहते हैं। तो शास्त्रों के अंदर दोनों चीजें हैं, पराविद्या भी है और अपराविद्या भी है। जैसे द्रोणाचार्य, उनका क्या विषय था, धनुर्विद्या, द्रोणाचार्य धनुष चलाना सिखाए, तो धनुष चलाना सिखाना ये इस भौतिक जगत के संबंधित विद्या है ना, आध्यात्मिक जगत में धनुष की जरूरत नहीं है, भौतिक जगत में जरूरत। उसी प्रकार से आयुर्वेद, ये पराविद्या है कि अपराविद्या, अपराविद्या, ये भौतिक जगत के संबंध में विद्या है। तो शास्त्रों में दोनों है, पराविद्या भी है अपराविद्या भी है। तो अपराविद्या मतलब भौतिक जगत से संबंधित वो विद्या जिसका उद्देश्य है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता करना। तो अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी किस लिए, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार अधर्मियों का नाश करने के लिए, इसलिए इस विद्या से उन्होंने भगवान की सेवा की, और इसलिए वो अपराविद्या है जो भगवत धाम ले जाने में सहायक बनी। तो यह है अपराविद्या। लेकिन अविद्या क्या होती है, वो विद्या जिसको प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य होता है भौतिक इंद्रिय तृप्ति, इस भौतिक जगह को कंफर्टेबल बनाना, उसे अविद्या कहते हैं। तो जो ऐसी विद्या है उसके जो एग्जेम्पलरी टीचर हैं, आदर्श टीचर अविद्या के, वो कौन कौन हैं, शंड और अमर्क, जिनकी पाठशाला में प्रहलाद महाराज को भेजा गया। तो जो हिरण्यकश्यपु है वो अविद्या में टॉप था, नंबर वन, उसको बहुत शक्ति थी, उसको सब प्रकार की अविद्याओं का ज्ञान था, पूरे जगत को उसने जीत लिया था। हम तो अपनी आज की तकनीकी विज्ञान से हिरण्यकश्यपु के पास भी नहीं है, फटक भी नहीं सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं। हिरण्यकश्यपु तो बहुत बड़ा चढ़ा था विद्या में, और जो उसका वो जो स्कूल था वो बहुत रॉयल स्कूल था जिसमें प्रहलाद महाराज को भेजा गया, वो पैलेस के अंदर था, वहां पर राजा का लड़का पढ़ता था। तो आप लोगों ने बड़े बड़े स्कूल, यहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा स्कूल है अहमदाबाद में, मोस्ट फेमस हैं जी, सेंट जेवियर्स, ऐसे ही बहुत सारे हैं, दून, दून स्कूल। तो ये सब शंडमर्क के विद्यालयों के समान हैं, रॉयल, यहाँ पर क्या है, सब प्रधानमंत्री के बच्चे ऐसे सब लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को जिस स्कूल में भर्ती किया गया वो शंडमर्क का जो था, जहाँ टीचर थे, तो वो स्पेशल टीचर्स थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे, स्पेशल टीचर। तो ऐसे ही ये जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं इसमें बहुत अमीर परिवार के बच्चे और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं, और टीचर्स जो हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं अविद्या देने में। और ऐसे स्कूल से पढ़ करके जो बच्चे निकलते हैं वो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी बनते हैं। तो ऐसे स्कूलों का विवरण भी हमको मिलता है, तो वो अविद्या है, क्योंकि वहां पर हिरण्यकशिपु और शरणमर्द जो शिक्षा दे रहे थे, जो पॉलिटिक्स सिखा रहे थे, जो अर्थशास्त्र सिखा रहे थे, जो धनुर्विद्या जो सभी सिखा रहे थे, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो और मौज करो। तो ये तीन चीजें हैं, पराविद्या, अपराविद्या और अविद्या। तो भक्तिवेन ठाकुर यहां कह रहे हैं कि अभी मैं समझ रहा हूं कि जो मैंने सो कॉल्ड विद्या ग्रहण की वो विद्या नहीं थी, वो अविद्या थी, क्योंकि उसका हेतु था इंद्रतृप्त। इसलिए आज वो बुढ़ापे में मुझे बड़ा दुख हो रहा है उस विद्या के कारण। आगे कहते हैं भक्तिवेन ठाकुर, सारी जड़ विद्या माया का वैभव है। ये जड़ विद्या है, जो अविद्या है, ये माया का वैभव है। तो हम सोचते हैं वैभव मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य, वैभव। तो जिसके पास जितनी विद्या है उसका ऐश्वर्य उतना ज्यादा होता है आजकल, करेक्ट? जितनी डिग्री है उसकी छाती उतनी चौड़ी होती है। तो ये वैभव है, लेकिन किसका वैभव है? ये माया का वैभव है, इल्यूजरी पोटेंसी का वैभव है। ये माया का वैभव है। तो माया का वैभव क्या है? वो छाती फूलती है, लेकिन बुढ़ापे आने पर उसमें पंचर हो जाता है, वो काम नहीं आती है, वो इल्यूजन है, इल्यूजरी है, सपने की तरह से, जैसे सपना टूट जाता है ऐसे ही। ये जो विद्या है ये लगती है अच्छी, लेकिन जब समय आता है तब ये सब कुछ काम नहीं आने वाली है, इसलिए ये रियल नहीं है। तो यहाँ पर ईशोपनिषद में जो हमने श्लोक पढ़ा, वहां पर इस विद्या की तुलना की गई थी मणि जड़ित सांप। तो दो प्रकार के सांप होते हैं, एक होते हैं मणि वाले और एक होते हैं बिना मणि वाले। तो जो मणि, जिनके सिर पे मणि होती है, वो ज्यादा भयानक होते हैं, वो तो बहुत विशाले होते हैं। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा अविद्या है वो उतने ज्यादा भयानक है, वो मणि सज्जित सर्प की तरह से। यहां पर स्पष्ट कहा गया है ईशोपनिषद में कि जो लोग अविद्या में हैं वो तो अंध में जाएंगे ही, जिनको कोई विद्या नहीं, जिनको आत्म साक्षात्कार को कोई ज्ञान नहीं है, वो तो नरक में जाएंगे ही। लेकिन जो विद्या के नाम पर अविद्या को बढ़ावा दे रहे हैं वो तो और गहरे नरक में जाएंगे। बहुत क्लियरली बताया गया, अविद्या के हमें कोई ज्ञान नहीं है, वेदों का कोई आत्म साक्षात्कार नहीं है, इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, सिंपल अंगूठा टेक है, लेकिन इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। और दूसरे हैं पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। तो कौन सा ज्यादा डेंजरस है? पीएचडी वाले ज्यादा डेंजरस, क्योंकि वो लोग बहुत सिस्टमेटिकल इंद्रिय भोग की शिक्षा देंगे सबको, उसके लिए बहुत व्यवस्थित कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण कराया जाएगा, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट निकाले जाएंगे, एडमिशंस ओपन, मेक योर चाइल्ड हिज फ्यूचर सक्सेसफुल। तो इतना ज्यादा अविद्या का प्रचार में वो लगेंगे, क्योंकि मणि सज्जित सांप की तरह हो गए हैं और भयानक हो गए हैं, तो अविद्या से भी ज्यादा वो भयंकर लोग हैं। ऐसे लोग समाज में, जो समाज का जो हेतु है, जो भगवान का इस सृष्टि के निर्माण के पीछे जो मिशन है कि कैसे सब लोग भगवत धाम जाएं, उसके अगेंस्ट लोगों को प्रचार करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसीलिए वर्तमान समाज में, समाज को आध्यात्मिक बनाने के रास्ते में, जन समुदाय को भगवत चेतना, ईश्वर चेतना में लाने में सबसे बड़ी रुकावट यदि कोई है आज, कौन है वो लोग? सॉरी टू से, आवर टीचर्स एंड आवर पेरेंट्स, दोज हु आर लाइक दैट, वो थिंकिंग लाइक दैट। अगर माँ बाप ऐसे ही सोचते हैं और शिक्षक ऐसे ही सोचते हैं, अविद्या ही विद्या है और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आत्म साक्षात्कार बच्चा करे कि ना करे वो चलेगा, लेकिन इंजीनियर जरूर बनना चाहिए। अगर वो नहीं बना तो हमारे समाज में नाक कट जाएगी। पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर हो गया, दोनों आड़ोस पड़ोस में चाचा का लड़का हो गया, बुआ जी का लड़का हो गया, हमारे बच्चा रह गया, इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी हमारे लिए? तो ऐसा सोच करके जो बच्चों को अविद्या ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं, अगर सेकंड नंबर आता है क्लास में तो डंडे मारते हैं, सेकंड क्यों आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, अविद्या में दूसरा नंबर क्यों आया, पहला नंबर क्यों नहीं आया। तो जो आध्यात्मिक, जो भगवान के प्रति जो अनुराग है, उसको भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट वो होता है, क्योंकि पूरा जीवन का हेतु ही बदल जाता है, जीवन का केंद्र ही बदल जाता है। जीवन का केंद्र है आत्म साक्षात्कार, विद्या का वही एकमात्र पर्पज है, केवल वही विद्या होनी चाहिए जो आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है। भौतिक विद्या केवल उतनी ही जितनी आत्म साक्षात्कार के लिए, जितना इस संसार में बने रहने के लिए जरूरी है, दैट मच ओनली इज नेसेसरी। उसके अतिरिक्त जो भी कुछ केवल इस भौतिक जगह को कंफर्टेबल बनाने के लिए, रचे पसे रहने के लिए होती है, वो उतना ही जीवन का लक्ष्य हमारी आंखों से धूमिल कर देती है। वी लूज द साइट ऑफ इट, कंप्लीटली इल्यूजन्ड। तो इस प्रकार से ये तीन है, पराविद्या, अपराविद्या, अविद्या। तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं आगे, ये जो सारी जड़ विद्या माया का वैभव है और तुम्हारे भजन में बाधा है। ये भक्तिम ठाकुर का साक्षात्कार है, ये किसी सामान्य व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं है। जो हम पढ़ना चाहते हैं, हमसे बहुत ज्यादा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका साक्षात्कार है। उनके जैसे तो बनना बहुत मुश्किल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय के। तो उनका ये साक्षात्कार है कि ये सब जो जड़ विद्या है, ये तुम्हारे भजन में बाधा है भगवान। इस अनित्य संसार के प्रति मोह जन्माकर यह जीव को क्या बना देती है, गधा, गधा बना देती है। तो गधा जो एक विशेष जानवर है, क्यों उसको यहां पर यूज किया गया है, उसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण होते हैं गधे के अंदर, इसलिए शास्त्र में अनेक जगह पर गधे की उपमा दी गई है, गधे का उदाहरण कई जगह दिया गया है। कहां कहां पर, सैव गोखरा, फिर शविड वरा वरोष्ट खरई, तो कहां कहां पर यूज हुआ है कि जो लोग इस शरीर को जो तीन धातुओं से बना है उसी को मानते हैं कि वही मैं हूं, जो पत्नी बच्चे इत्यादि ये मेरे हैं, और जो तीर्थ स्थानों में केवल स्नान करने जाते हैं और वहां पर आध्यात्मिक शिक्षा लेने नहीं जाते, ऐसे लोग गधे के समान। और फिर शविड वरहोष्ट खरई समतुतः पुरुषा पशु, तो समाज में सामान्यतया जो लोग होते हैं वो चार श्रेणी के बताए गए हैं, जिनको चार प्रकार के जानवरों से जिनकी तुलना की गई है, श्व, फिर श्वविड, श्वविड मीन्स मल खाने वाला यानी सुअर, फिर दूसरा उष्ट्र, ऊंट, फिर श्वविड वरह, वरोष्ट्र खरे, खरे मीन्स गधा, डॉग, श्व मीन्स डॉग, विडवर मीन्स सुअर, और फिर ऊंट, और फिर। तो ये चार जानवरी क्यों चुने गए, सबके पीछे कारण है। तो शुअ की स्पेशलिटी क्या होती है, जो डॉग है, कुत्ता है, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि आप देखिए जो कुत्ते होते हैं सड़कों पर, तो आप जब सुबह घर खोलते हैं तो उनको अगर आप हर रोज खाना दे रहे हैं तो पूछ लाते लाते आए थे इंतजार में रोटी, और फिर कोई इनको बोलता है हट तो भाग जाते पीछे, फिर दूसरे दरवाजे पे जाते हैं पूछ लाते हुए, फिर बोलता हट, फिर तीसरे पे जाते हैं। तो ये उनका काम होता है। तो उसी प्रकार से आजकल के समाज में जो शिक्षा दी जा रही है उससे इसी प्रकार की मनोवृत्ति सिखाई जाती है कि हम लोग जॉब एप्लीकेशन लेके जाते हैं एक ऑफिस में, कृपया मेरे को जॉब दे दो, हट, फिर दूसरी जगह लेके जाते, प्लीज कोई बात नहीं, सैलरी 50% दोगे तो भी चलेगा, अभी क्या है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, अरे भाई जॉब खत्म हो रहे जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि तुम कम सैलरी में काम करना स्वीकार कर लो, लेकिन जॉब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, इसलिए जॉब करो, हम तुम्हें भगा रहे हैं, कम सैलरी दे रहे हैं, आधी रोटी दे रहे हैं, चौथाई रोटी दे रहे हैं, फिर भी बने रहो। तो इस प्रकार से हमको एक ट्रेनिंग है कि कैसे हमें ये मानसिकता लेनी है कि हमें दर दर जाके भटकना है, कि हमें कृपया अगर हमें आप अपनी नौकरी में नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, हम भूखे मर जाएंगे भाई, नौकरी में रखो। तो इसलिए उदाहरण दिया गया है श्व। फिर मल, मल भक्षक सुअर, तो उसकी विशेषता है कि वो जो है इंद्रिय भोग में इतना ज़्यादा निम्न स्तर पर गिरा होता है कि उसे उसे कोई भान ही नहीं होता है कि कौन क्या है, संभोग में लगा रहता है, इतना ज़्यादा निकृष्ट स्थिति में है कि उसे कुछ नहीं पता है। तो आजकल की सभ्यता भी धीरे धीरे इसी प्रकार से चल रही है, इंद्रिय भोग और यौन संबंध स्वतंत्र और पूरी तरह से अश्लीलता, तो इस प्रकार से वो एक सुअर जैसा बनना है। और फिर तीसरा है उष्ट्र, उष्ट्र मतलब ऊंट। तो ऊंट की विशेषता क्या होती है, तो ऊंट जो है वो कांटे खाता है, और कांटे खाता है तो उसकी जीभ कटती है और जीभ में से खून निकलता है, और वो जो खून जो खुद चखता है तो उसे लगता है बड़ा स्वादिष्ट है कांटा। तो कांटा स्वादिष्ट नहीं होता है, वो खून स्वादिष्ट होता है जो उसका ही खून है, लेकिन वो मूर्ख है इसलिए कांटा खाता है, सोचता कांटा स्वादिष्ट है। इसलिए वर्तमान समाज में हम लोग सोचते हैं अरे भाई मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया है, वाह क्या बात है, जो हमारा ही खून चूस करके हमको दे रहे हैं हम सोचते हैं मेरी अभी ज़्यादा बड़ी कंपनी, क्यों ज़्यादा अच्छा जॉब है, पहले वाले से बेटर है, क्यों पहले वाले में केवल 9 घंटे काम करना पड़ता है, 12 घंटे करना पड़ता है, बेटर जॉब, हमेशा मोबाइल मेरे को दिया हुआ है, कार दी हुई है जिससे कि रात को 12 बजे भी मुझे बुला सकते हैं, बेटर जॉब। तो ऊँट की तरह अपना ही खून चूस चूस के हम लोग बहुत सुखी होते रहते हैं, वाह कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा पैसा तो मिल रहा है ना, पहले मुझे 50,000 मिलता था, 55,000 मिल रहा है, कोई बात नहीं, अभी नींद थोड़ा कम हो रही है, परिवारजन के साथ मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है भाई, टाटा TCS टाटा कंसल्टेंसी। और फिर खरई गधा, तो यहाँ पर गधा का जिक्र आया, तो गधा की विशेषता है कि वो बिल्कुल बुद्धिहीन होता है। तो धोबी उसके ऊपर कपड़े लाता है और धोबी घाट पर ले आता है और फिर कपड़े उतारता है और कपड़े धोता है और फिर कपड़े जब गीले आते हैं तो उसका वजन कई गुना हो जाता है और फिर वो गीले कपड़े दोबारा से गधे के ऊपर लाद देता है और फिर गधा पूरे टाइम वफादार वहीं खड़ा रहता है और फिर जब ये पूरा लोड वापस घर पहुँचा देता है तो वो जो धोबी है वो रास्ते में से थोड़ी घास उखाड़ता है और उसके मुंह में डाल देता है और गधा बड़ा संतुष्ट रहता है कि मेरा स्वामी कितना अच्छा है, अगर मैं ये कपड़े नहीं धोता तो आज ये घास नहीं मिलती मेरे को। उसको ये पता नहीं है कि वो घास जो उसने दी है जमीन से उखाड़ के वो तो तुम भी खा सकते थे अपने आप, उसमें पूरा दिन वहाँ खड़े रह करके और वो सब वेट वजन ढोने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो गधा है, इसलिए हर एक भाषा में जब आदमी मूर्ख होता है तो उसको बोलते हैं गधा, तो इसलिए वो गधा है, इसलिए उसको ये नहीं पता। तो ऐसे ही हम लोग सोचते नहीं, जब तक मैं 12-13 घंटे काम नहीं करूँगा, जब तक मैं ये डिग्रियाँ हासिल नहीं करूँगा तब तक मैं भूखा मरूंगा। जानवर बिना डिग्री हासिल किए खा सकता है लेकिन मैं नहीं खा सकता, तो इसलिए उसकी उपमा यहाँ पर गधे से दी है कि ये जो जितना ये जो अविद्या जो जितना ग्रहण करता है वो एक कन्वर्ट कर देती है, जीव को गधा बना देती है, जीव को गधे में कन्वर्ट कर देती है अविद्या, कि उसको ये अनुभव इसको पूरा ये फील करा देती है कि देखो अभी तुम्हारे पास डिग्री है इसे तुम्हें नौकरी चाहिए 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 और चाहिए, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम जी नहीं सकते, तो इसलिए अभी वो गधा बन जाता है। चार चपाती खाने के लिए क्या 12-13 घंटे और इस सब इसकी जरूरत है, नहीं है एक्चुअली, लेकिन गधा बन गया ऐसे उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ भक्तिवेद ठाकुर कह रहे हैं कि वो जीव को गधा बना देती है और इस अनित्य संसार के प्रति मोह जन्म दे देती है, अटैचमेंट। तो जितनी हमारे पास एजुकेशन होती है और जितना ये कागज के नोट हम लोग बटोर लेते हैं, कागज के टुकड़े, उतने हम लोगों को उससे कुछ ये सेंसेस को टिटिलेट करने के लिए कुछ साधन एकत्र कर लेते हैं और उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है। ये पूरी मनुष्य सभ्यता है अटैचमेंट को कम करने के लिए, इस मोह को कम करने के लिए, ये बहुत ही जगत के प्रति मोह को कम करना उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। हम सभी रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं, फीवर है सबको 100 डिग्री, लेकिन जो जितना एजुकेशन प्राप्त करता है उसका फीवर उतना ही बढ़ जाता है, उसका अटैचमेंट उतना ही बढ़ जाता है। उसके पास अटैचमेंट, अटैच होने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसकी कार है, उसका वीडियो गेम्स हैं, और उसके पास बंगला है, और उसकी पोजीशन है, और उसका बैंक बैलेंस है, और क्या क्या नहीं है। तो ये जितनी चीज़ें हैं उससे हम और अधिक अटैच होते रहते हैं, तो उल्टा फीवर बढ़ता रहता है। भगवत धाम जाने के लिए हमें इस भौतिक जगत से अनासक्त होकर, मैं आसक्त मन पार्थ, भगवान कहते हैं मेरे में आसक्त हो, लेकिन ये अविद्या की वजह से हम क्या होते हैं, कंप्यूटर में आसक्त हो जाते हैं, मेटेरियल गैजेट्स में आसक्त हो जाते हैं, और भगवान में आसक्त कैसे होंगे फिर। तो इसीलिए अनित्य संसार के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाता है। फिर आए कह रहे हैं भक्तिवेन ठाकुर, वही गधा बनकर मैंने अनेक काल तक संसार का बोझ वहन किया। जैसे गधा बोझ वहन करता है, ऐसे ही हम पूरा जीवन ऐसे ही बोझ वहन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नौकरी तो करनी है, मुझे इतना घंटा काम करना ही है, मुझे ऐसा सब करना ही है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं अपने ऊपर। हाँ ये जिम्मेदारी है, मेरी जॉब है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बड़ा वफादारी काम करना है। क्या जिम्मेदारी है? कि मेरा बॉस है मल्टी मिलियनेयर, उसे और एक और मिलियन बनाने हैं इस साल में, इसलिए मैं उसके लिए वफादार नौकर की तरह काम करूँगा। उसे वो ऐशो आराम में पैसा लुटाना है, और मैं वफादार हूँ इसलिए मुझे उसके ऐशो आराम के लिए काम करना है। तो इस प्रकार से पूरा जीवन हम ये बोझ वहन करते हैं जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है वहन करने की। अब बुढ़ापे के समय शक्ति के अभाव में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी जब शक्ति होती है शरीर में, तब वो जो बॉस है वो खुद करोड़ रुपए कमाता है और हमको 1 लाख रुपए देता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, 1 लाख मिल गया मेरे, अभी मैं इससे एंजॉय करूँगा। लेकिन बुढ़ापे में शक्ति नहीं रहती है, आँखों से दिखना बंद हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, कान सुनना बंद हो जाता है, कमर झुक जाती है, अभी वो सब बंगला और पैसा सब खाने को दौड़ता है, उसे कुछ नहीं कर सकते, अभी सब ये विलास, अभी तो आनंद वो नहीं ले सकता, अभी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, तो उस समय में अभी कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ सुना सुना लगता है, कुछ भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। फिर उस समय जीवन अब यातना बन गया है, भक्तिवेन ठाकुर कह रहे हैं अभी जीवन यातना बन गया, इट्स ओनली नाउ मिजरेबल फॉर मी। यह विद्या अविद्या बन गई है और अविद्या की ज्वाला असहनीय हो गई है। अभी जो अविद्या की ज्वाला है वो असहनीय हो गई है। तो भक्तिवेन ठाकुर भक्त बन गए इसलिए अब इनको ये समझ में आ रहा है, हमारे ऑन बिहाफ लिख रहे हैं ऑफकोर्स, कि इनको समझ में आ रहा है कि ये असहनीय हो रही है, लेकिन जो जीवन पर्यंत गधा बना रहता है उसको ये फिर भी समझ में नहीं आता, वो अगले जन्म में फिर गधा बनेगा, जब तक समझ में नहीं आया तब तक गधा बनता रहेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन जो भक्त बन जाता है उसको जल्दी समझ में आता है कि मैं गधा बन गया हूँ, और उसको पता लगता है कि कैसे यातना है, ये सब जो भौतिक प्रगति हम कर रहे हैं ये केवल भगवान के भजन में बाधा है, और इसीलिए ये केवल उत्पीड़न है, ये केवल मिजरी है, क्योंकि ये भगवान से हमें दूर कर रही है, और जब हम भगवान से जितना दूर जाते हैं उतना ही हम असंतुष्ट होते हैं। तो इसलिए असहनीय हो गई है, यह विद्या शूल जैसी बन गई है, शूल लाइक प्रिकिंग, शूल जैसी बन गई, चुभ रही है। आई वेस्टेड माई लाइफ, होल लाइफ, अभी पूरा जीवन चला गया, अभी क्या करूंगा, अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, केवल हताश होकर के बस जीवन की अंतिम घड़ी हम लोग गिनते रहते हैं, कब मृत्यु आई, कब मृत्यु आई, कब मृत्यु आई, ऐसा। हे प्रभु, इस संसार में तुम्हारे चरणों के अलावा कोई अन्य धन नहीं है। हम लोग कितने ललायत हैं धन के पीछे, नहीं? लेकिन यहां भक्तिवेन ठाकुर का रियलाइजेशन है, इस पूरे संसार में आपके चरणों के अलावा और कोई धन नहीं है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये रियलाइजेशन तक पहुंचना। क्या है, हरि हरि नाम बिना किछु, 14 भुवन नाम बिना किछु नहीं, और 14 भुवन है माझ, इन 14 भुवन में, इस केवल पृथ्वी पर ही नहीं, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक कुछ नहीं है, केवल हरि नाम, ये धन है, ये वास्तविक धन है, क्योंकि हरि नाम, शुद्ध नाम मतलब शुद्ध भगवान की सेवा, वही केवल आत्मा को संतुष्ट कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अभी ये हमें आज अनुभव हो, कल अनुभव हो, इस जन्म में अनुभव हो, 10 जन्म बाद अनुभव हो, वो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितने उस इंटेलिजेंट हैं। लेकिन तथ्य यही है कि बाकी सब धन धन नहीं है, वो सब माया द्वारा जनित है, वो केवल इल्यूजरी है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक धन केवल हरिनाम धन है, केवल भगवान के चरणों की सेवा है। इसलिए एक आचार्य यामुनाचार्य लिखते हैं कि मैं उस दिन की राह देखता हूं मैं कि कब मैं आपके चरणों पर एक नित्य दास, एक किंकर बनकर बनूंगा, नित्य आपका किंकर बन जाऊंगा, प्ररश्यामि सनाथ जीवितम, और उस स्थिति में बड़ा हर्ष का अनुभव करूंगा। क्योंकि वही एकमात्र हर्ष की स्थिति है जब हम इस प्लेटफॉर्म में पहुंच जाए कि कृष्ण की सेवा करने में संतुष्ट हो। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने पर और इससे अधिक कुछ प्राप्य वस्तु नहीं रहती है, वो पूर्णता है, वो सिद्ध अवस्था है, वो समाधि अवस्था है। तो जीवन का यूज होना चाहिए इस रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब हम अविद्या को बढ़ावा देते रहते हैं तो कहां समय और कहां शक्ति और कहां रुचि है इस रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। हम तो नाव को उल्टी डायरेक्शन में बहा रहे हैं, इसलिए यह अविद्या फिर शूल की तरह चुभती है। लेकिन भक्तिवेद ठाकुर कह रहे हैं बड़ा सौभाग्य है कि अब अंत में मैं अभी ये समझ गया हूं कि आपके चरणों के अलावा वास्तव में और कोई धन नहीं, बाकी सब झूठा है। इसलिए भक्ति विनोद, जड़ विद्या को छोड़कर तुम्हारे चरणों को ही अपने जीवन का सार सर्वस्व बना रहा है। इसलिए अभी भक्ति विनोद ये सब जड़ विद्या को छोड़कर अभी केवल आपके चरणों को ही जीवन का सार बना रहा है। तो हम सब रूपानुगा हैं, प्रभुपादानुगा हैं, आचार्यों के पदचिन्हों पर चलना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए हमें भक्ति विनोद ठाकुर के इन भजन से, ईशोपनिषद के इन श्लोकों से डिस्टिंक्टली समझना चाहिए कि अविद्या क्या है, पराविद्या क्या है और अपराविद्या क्या है। तो अपराविद्या की मनाई नहीं है, अपराविद्या जब तक हम इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में हैं तब तक जरूरी है, दैट इज एक्सेप्टेड। लेकिन अविद्या वो नहीं होनी चाहिए, यानी शरीर यापन के लिए जितना जरूरी है उतने तक ही हमें संतुष्ट होना चाहिए भौतिक परिपेक्ष में, और फिर इस शरीर का उपयोग पूरी तरह से केवल भगवान की सेवा में होना चाहिए। तो शरीर को मेंटेन करने में जो विद्या, जो समय आपने लगाया, वो स्पिरिचुअलाइज होगा, क्योंकि आपने उस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में किया, इसलिए वो गलत नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता समसिद्धिम लवते नरा, अपने अपने कार्य में नियोजित होकर के, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में रहकर के भी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अगर अपने इन कार्यों से हम भगवान की सेवा करें, तो उसकी मनाही नहीं है। लेकिन जहां पर हमारे कार्य का लक्ष्य, हमारी विद्या का लक्ष्य, एजुकेशन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति हो जाता है, वहां पर वो अविद्या बन जाती है, वहां पर पर्पस डिफीट हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हम लोग जाने लगते हैं। इसीलिए हमें डिस्टिंक्टली ये सब समझना चाहिए कि पराविद्या तो सबके लिए जरूरी है ही, दैट इज अ सेंट्रल होम, जानना कि भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, क्या है जीवेर स्वरूप हाय नित्य कृष्णदास, यही संबंध है, हम कृष्णदास हैं, और इसके लिए इसको कल्टीवेट करना, ये पराविद्या है। हरिनाम के द्वारा, भगवद्गीता अध्ययन, भागवत अध्ययन के द्वारा, अर्च विग्रह की पूजा के द्वारा, साधु संग में ये सब भक्ति की क्रियाओं के द्वारा ये पराविद्या डेवलप होती है। तो ये जो मंदिर हैं, ये जो संस्था है, ये पराविद्या का एजुकेशनल सेंटर है, ये भी एजुकेशनल सेंटर है। प्रभुपाद हमेशा इस्कॉन इज एजुकेशनल सेंटर, एजुकेशनल कल्चरल सेंटर। तो ये पराविद्या की शिक्षा यहां दी जाती है। और एक बड़े स्कोप में अपराविद्या, यानी इस भौतिक जगत में रहने के लिए, शरीर टिकाने के लिए जो जरूरी है उसकी विद्या, लेकिन अविद्या वो नहीं। तो आज दुर्भाग्य से हम जिस सिस्टम में फंसे हुए हैं वहां पर हमें ऐसे ही जगह जाना पड़ता है, ऐसे ही लोगों के साथ रहना पड़ता है जो अविद्या में फंसे हैं। तो इसलिए श्री प्रभुपाद चाहते थे कि हम ये अपने बच्चों को अविद्या ना दें, पराविद्या दें और ये अपराविद्या दें। गुरुकुल का ये कार्य है, पराविद्या और अपराविद्या। तो ये बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, हमारी अपनी सोसाइटी के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है इसको सिस्टमेटिकली डेवलप करना। और अगर ऐसी स्थिति में तुरंत आप नहीं हैं, हम लोग नहीं हैं, तो कम से कम हमें अपने बच्चों को अपने आप, ये हर माता पिता की अपनी जिम्मेदारी है कि बच्चे विद्यालय में अविद्या सीख के आ रहे हैं तो घर में आकर के उन्हें जितना बन सके कम से कम वो अविद्या का उसको थोड़ा हटाने की जरूरत है। आकर के उसे बताएं कि ठीक है जो पढ़ रहे हो वो सब अविद्या है, वो सब थोड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि कैसे बच्चों को बताएंगे कि हम आपको अविद्या सीखने के लिए भेज रहे हैं, बड़े असमंजस की स्थिति है। फिर भी समहाउ अगर हम बेस्ट चीज पर नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम हम उन्हें अपने आप तो शिक्षा दें कि वास्तविक विद्या क्या है, उसमें उनको रोके नहीं, कम से कम उसमें उनको बढ़ावा दें, उनका इंकरेज करें इस विद्या को लेने में। वो अपने भाग्य के अनुसार अपने शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करेगा, उसके लिए थोड़ा प्रयास की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पीछे पागल हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयास की जरूरत है बच्चों को पराविद्या, ये शास्त्रों की विद्या देने की, उनको कृष्ण भक्त बनाने की। क्योंकि अगर कृष्ण भक्त बने तो जीवन सफल, और कृष्ण भक्त नहीं हुए और बाकी कुछ भी हुए असफल। पराभावस्तावत अबोध जाता यावत न जिज्ञासता आत्मतत्वम, जब तक आत्मतत्व नहीं समझेंगे तब तक बाकी सब कुछ बेकार है। इसलिए हम कई बार हम होते भक्त हैं, दीक्षित भी होते हैं, लेकिन ये पूरे समाज का प्रभाव इतना तेज है, प्रवाह इतना तेज है कि हम लोग इतना अविद्या के बखान सुनते हैं कि हम लोगों को भी ऐसा लगने लगता है कि यही सही बात है, यही सच है। और अपने बच्चों को भी हम ऐसे ही प्रेरित करते हैं क्योंकि खुद उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए हम यदि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को गहराई से समझेंगे, बाबा पढ़ेंगे, तो समझेंगे कि ये अविद्या है, इसके लिए एंकरेज करने की जरूरत नहीं है। जितना मिनिमम जरूरी है, जिससे कान चल जाए उतना बहुत है बस। सेंट्रल पॉइंट शुड बी कैसे हम उनको भक्त बनाएं बच्चों को। तो ये आज के श्लोक के ऊपर हमने इस प्रकार से चर्चा की। हरे कृष्णा। अभी किसी का प्रश्न है इस विषय में कोई, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ जी। मैंने बोला कि वो लोग जो अपने बच्चों को भेजते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, वाई डू वी कॉल देम एज ए चीफ गेस्ट? यस यस। तो उनका प्रश्न है, यदि वो सब लोग अविद्या में हैं, बड़े बड़े लोग, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि सभी, तो हम फिर उनको क्यों चीफ गेस्ट की तरह से बुलाते हैं? तो मंदिर में जैसे फेस्टिवल्स जब होते हैं, कोई विशेष आयोजन है जिसमें बहुत सारी पब्लिक आती है, अभी हम ये बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण क्यों करते हैं? भगवान की भक्ति तो कहीं पर भी हो सकती है, बल्कि इतना गॉर्जियस अरेंजमेंट करने के लिए बहुत शक्ति इसके पीछे आती है। लेकिन इसलिए अरेंजमेंट है क्योंकि जो सामान्य लोग हैं उनका सोच है कि जहां पर जितनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग है वो उतना इंपॉर्टेंट है। लोगों की मानसिकता ये है। अभी हमें लोगों को भक्त बनाना है तो लोगों की ये मानसिकता है, इसलिए हम एक बड़ा मंदिर या एक महोत्सव के अंदर चीफ गेस्ट मोदी जी आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, एक्स वाई जेड एनीबडी कोई भी आ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में आ रहा है और ही इज गोइंग टू कम। तो क्योंकि सामान्य लोग इस अविद्या में हैं तो वो इसको महत्व देते हैं, इस बहाने वो मंदिर आते हैं। लेकिन फिर हमारा हेतु ये है कि जब वो एक बार मंदिर आ जाएं तब हम उनको बताएं कि क्या अविद्या है और क्या विद्या है। वो यहां पर देखने आते हैं बिल्डिंग, वो भगवान का दर्शन या ये शास्त्र सुनने के नहीं आते हैं, वो बिल्डिंग देखने आते हैं। इस्कॉन टेम्पल बहुत बड़ा मंदिर है, वो टेम्पल बिल्डिंग देखने आते हैं, आरसीसी वर्क देखने आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको दिखाएं कि यहाँ पर वास्तव में देखने लायक चीज ये बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर देखने लायक चीज है शिष्य राधा गोविंद और ये पुस्तकें पढ़ने, ये है। तो उसी प्रकार से जब समारोह हो तो चीफ गेस्ट वो हैं, समाज में वो सम्मानित हैं, इसलिए हम भी उनका सम्मान करेंगे क्योंकि हम समाज के अंग हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये सामाजिक सम्मान है, सामाजिक स्तर पर सम्मान है, तो सामाजिक स्तर का सम्मान उनको देना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सम्माननीय वो है जो आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़ा चढ़ा है, चाहे वो कोई भी सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये हम जो चीफ गेस्ट बुलाते हैं, क्योंकि जनता की ऐसी भावना है, इस बहाने जनता आए मंदिर में और फिर हम उनको सही शिक्षण दे सकें, तो ये हेतु है इस सब के पीछे। और कोई प्रश्न है? Yes. हमने यहाँ पर लक्षण डिस्कस किए अविद्या के, अभी वो जो भी व्यक्ति उसमें है वो अविद्या में है, चाहे वो भक्त के चोले में है, चाहे वो जज के चोले में है, चाहे वो डॉक्टर में है, चाहे वो भिखारी में है, संत में है, कैसे भी है, तो किसी भी व्यक्ति की पहचान लक्षणों से होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमने प्रमुखता डिस्कस किया लक्षणों को कि अविद्या के डेफिनेशन क्या है, अविद्या में कौन व्यक्ति है। इन जनरल यहां पर हम एक सामान्य दृष्टिकोण लेके चलते हैं, उसमें ऐसे लोग हो सकते हैं, जैसे अब हम भक्तिनाथ ठाकुर को ही देखें तो भक्तिनाथ ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, लेकिन अंतिम चरणों में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे लेकिन उस समय में भी महान भक्त भी थे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहां पर हम एक जनरल व्यू लेके चल रहे हैं, सामान्यतः ये बात है, अपवाद हो सकते हैं, अपवाद अपवाद होते हैं, उनको लेकर के हम सिद्धांत डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पर हम एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो सामान्यतः तो ऐसा ही है ना, सामान्यतः जो हमारे टीचर्स हैं, सामान्यतः उनकी विचारधारा क्या है, सामान्यतः जो लोग बड़े लोग हैं उनकी विचारधारा क्या ऐसी नहीं है, सामान्यतः इन जनरल तो ऐसी है ना, अपवाद हो सकते हैं, तो उनको हम सम्मान करने के लिए तैयार हैं उस दृष्टि से। और कोई प्रश्न? ओके, अभी एक और छोटा सा अनाउंसमेंट, मतलब एक अनाउंसमेंट नहीं लेकिन अभिव्यक्ति ये है कि 18 तारीख को यानी बुधवार को हम लोग, मैं और हमारे साथ कुछ भक्त लोग, कुछ महीनों या साल के लिए साउथ इंडिया जा रहे हैं। तो पिछले 2 साल से हम यहाँ पर थे, आप सबका बहुमूल्य एसोसिएशन हमको प्राप्त हुआ और ये 2 साल का स्टे बहुत अच्छा हमारे लिए रहा, फार्म पर हमने कुछ कार्य किया, कुछ सीखा, यहाँ पर कुछ टीचिंग एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन अभी साउथ इंडिया में कुछ जिस मुख्य हेतु के लिए हम लोग आए थे फार्म कम्युनिटी वर्क के लिए, उसकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको डेवलप करने की प्रस्तुत हो रही है साउथ इंडिया में, कुछ भक्त लोग कुछ आना चाहते हैं लैंड पर, खुद रहना चाहते हैं, ज़मीन परचेज करना चाहते हैं, खुद आकर के हम बसना चाहते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए हम लोग उनके साथ ये फार्म को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए कुछ समय वहाँ पर उनके साथ में रहने के उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कुछ महीनों के लिए हम आपके एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन से थोड़ा दूर रहेंगे। हमारी प्रार्थना है कि भविष्य में, हमारा ऐसी इच्छा है कि भविष्य में फिर वहाँ से सीख करके हम पुनः इस क्षेत्र में आकर के कुछ प्रचार कार्य और कर सकें। और आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो हमारा कार्य है इसमें भगवान हमें मार्गदर्शन दें, आप ऐसी प्रार्थना भगवान से हमारे लिए करें। हरे कृष्ण।